नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। प्रधानमंत्री ने श्री मसूद को ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने इस त्यौहार के समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों और 8 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। मंत्रालय ने बताया कि ईरानी आक्रमण शुरू होने से लेकर अब तक देश की वायु रक्षा प्रणाली ने 341 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और 1748 ड्रोन हमले नाकाम किए हैं। उसने कहा कि इन हमलों में कर्तव्य निभाते हुए सशस्त्र बल के 2 जवान शहीद हो गए, साथ ही पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फिलिस्तीन के 6 नागरिकों की भी जान चली गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म करने पर विचार कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य पूरा करने के करीब है। उन्होंने संकेत दिया कि अन्य देशों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। श्री ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि किसी भी व्यवधान से वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सतर्क नागरिकों के सहयोग से सशक्त सेना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध अब सीमाओं से दूर चला गया है। इसमें आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र सहित राष्ट्रीय सुरक्षा भी शामिल हैं। उत्तराखंड के सैनिक स्कूल घोराखाल के स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही।
आज के वारफेयर में इकोनॉमिक वारफेयर के माध्यम से देशों को कमजोर किया जाता है। साइबर वारफेयर के जरिए पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। स्पेस डोमेन में भी प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा एक बड़ा विषय बन चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज इन्फॉर्मेशन वारफेयर का दौर है, जहां नैरेटिव को कंट्रोल करना भी वारफेयर का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल रिलायंस, अनिल, धीरूभाई अंबानी समूह के वरिष्ठ अधिकारियों से करोड़ों रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की। 2900 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के बाद ये मामला दर्ज हुआ था। जांच एजेंसी के अनुसार प्राथमिकी में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल धीरूभाई अंबानी और अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार के नेताओं ने चीन द्वारा पारित जातीय एकता और प्रगति प्रोत्साहन कानून की कल कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इससे तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में चीन का दमन और बढ़ेगा। 12 मार्च को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा हस्ताक्षरित कानून इस वर्ष 1 जुलाई से लागू होगा। तिब्बती नेताओं ने इस कदम को दीर्घकालिक दमनकारी कार्रवाई बताया, जो तिब्बती, उइघुर और अन्य अल्पसंख्यक संस्कृतियों को तेजी से नष्ट करेगा। सिक्किम के उत्तरी हिस्से मंगन में कल शाम 4.1 की तीव्रता का मध्यम श्रेणी का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 14 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इससे अभी तक किसी जानो माल की क्षति की सूचना नहीं है। इससे पहले गंगटोक और पाकयोंग जिलों में अगले 24 घंटे में 3500 मीटर ऊपर हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के तीसरे दिन कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक आयोजित की गई। चर्चा में ठोस, परिणामकारी तथा संचरित और कार्योन्मुखी साझेदारी द्वारा भारत अफ्रीका सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। मेरा युवा भारत सोमवार को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी पदयात्रा आयोजित करेगा। ये पहल मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी विषय पर आधारित होगी। ये पदयात्रा भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद भगत सिंह, शहीद शिवराम राजगुरु और शहीद सुखदेव थापर के बलिदान को श्रद्धांजलि होगी। मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वाश प्रतियोगिता में अनाहत सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल अनाहत ने तन्वी खन्ना को 3-1 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में वीर चोट रानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आज फाइनल में वीर चोट रानी और अभय सिंह आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।